سورت التوبہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 1 اور 2، ان دونوں کا آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورت ہم نے کل اللہ کی توفیق سے شروع کر دی تھی، اور سورت کا نام جو سورت التوبہ ہے اس کی وجہ، اور دوسرا نام جو ہے سورت البراءت اس کی وجہ بھی عرض کر دی تھی، اور تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن پاک کی یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے. آخر کیوں ایسا ہے؟ اس کی بھی تحقیقی وجوہات اور کچھ مفسرین کے علمی نکات اختصار کے ساتھ ذکر کیے تھے، جو کل نہیں آ سکے تھے بارش کی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ وہ ان حضرات سے جن کے پاس یہ محفوظ ہوتا ہے ان سے لے کے سن لیں. آج کی مجلس کے اندر ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے. اس سے پہلے ان آیات کے نزول کا تاریخی پس منظر وہ بیان کرنا ضروری ہے. ذہن میں رکھیں، سن 6 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سے لے کر کے 1700-1800 تک کے افراد ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں پہنچے ہیں تو قریش نے اور مکہ والوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے بات کرنے کے لیے، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، سارا عرب آتا ہے عمرے کے لیے، ہم بھی عمرے کے لیے آئے ہیں، کسی لیے کوئی پابندی نہیں، ہمارے لیے کیوں پابندی، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، عرب یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا، ہم نہیں آنے دیں گے. بہت ہی گفت و شنود کے شنید کے بعد جو ہے یہ طے ہوا تھا، اور یہ پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی کہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ ایک متعینہ مدت تک کے لیے کوئی معاہدہ کر لو، اور مجھے اور باقی عرب کو چھوڑ دو. اس دوران تم اپنی تیاری بھی کر لو گے ہم سے مقابلے کے لیے، کیونکہ پے در پے جنگوں نے تمہیں کمزور کر دیا ہے. باقی عرب پر ہم غالب آ گئے، پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے گا، اور اگر باقی عرب ہم پر غالب آ گئے تو پھر تمہارا مقصد تو گھر بیٹھے پورا ہو جائے گا. تو آؤ کچھ دنوں کے لیے کوئی معاہدہ کر لیں. یہ پیشکش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ بات تو بالکل صحیح ہے. چنانچہ معاہدہ ہوا ہے. سہیل بن عمر جو بعد میں مسلمان ہوئے، نمائندہ ہو کر آئے، اور معاہدے کی شکیں لکھی گئی ہیں. ان میں پہلی بات یہی تھی کہ اس سال آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال انہیں ایام کے اندر آئیں और 3 दिन यहाँ पर रहेंगे आप और उसके बाद वापस चले जाएंगे। पहली बात ये थी। दूसरी बात हम उसमें ये थी कि बड़ा अजीब वादा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि आइंदा जो है कोई भी हमारे पास से मुसलमान हो के आपके पास जाएगा तो आप वापस करोगे, आपके यहाँ से कोई भाग के आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया था। उसके अंदर एक ख़ास शिक ये भी थी कि अरब के जो दूसरे कबाइल हैं उनमें से जो चाहे वो क़ुरैश का हलीफ बन जाए, उनकी जानिब से दाखिल हो जाए मुआहदे में, और जो चाहे इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ बन जाए और इनकी जानिब से दाखिल हो जाए मुआहदे के अंदर। खैर ये मुआहदा हुआ है, तो इस मुआहदों को सामने देखते हुए अरब का एक कबीला है बनू खुज़ाआ, ये शुरू से ये हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते करने वाले थे, पूरा कबीला ही, अगरचे मुसलमान नहीं थे, चंद एक मुसलमान भी थे। तो ये लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस अहद में दाखिल हो गए। होता है ना इस तरह बनाकवाई मुआहदे जो होते हैं तो बाद में कुछ लोग इसमें दाखिल होते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हुआ, दिफाई मुआहदा। तुर्की कहता है कि हमें भी दाखिल करो, ईरान वाले कहते हैं हमें भी दाखिल कर लो इसमें, होते हैं ना इस तरह मुआहदे। तो बाद में जो है बनू खुज़ाआ व हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस मुआहदे में दाखिल हो गया कि हम इनके हलीफ हैं। और एक कबीला है बनू बकर, बहुत पुराना, वो लोग जो है वो कुरैश की जानिब से मुआहदे के अंदर दाखिल हो गए। खैर ये मुआहदा हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर उमरा के वापस आ गए हैं, और उसके बाद अल्लाह जल्ला शानू ने आपको खैबर की जानिब भेजा है। खैबर के इलाका सारा फतह हो गया है, यानी सन 6 हिजरी 7 हिजरी बिल्कुल अमन से गुज़रा है, 7 हिजरी 1 साल। फिर जब सन 8 हिजरी की इब्तदा हुई है 1 साल के बाद, वो जो कुरैश के जो मुआहिद थे उनके हिल्फ में दाखिल थे, उन्होंने अपने मुकाबिल बनू खुज़ाआ पर एक रात भरपूर हमला कर दिया। कुरैश के वो हलीफ थे तो कुरैश ने सोचा कि रात का वक्त है, किसी को क्या पता लगेगा, असलहा के ज़रिए और अपने नौजवानों के ज़रिए बनू बकर की मदद भी की। वो बनू खुज़ाआ वाले भाग करके हरम में दाखिल हुए, वहाँ भी उनको पनाह नहीं मिली, मारे गए, लूटे गए, तबाही मचाई इन्होंने, ये हादसा पेश आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर बनू खुज़ाआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ थे उनके जो सरदार थे सालिम बिन अम्र या अम्र बिन सालिम, वो आए हैं मदीना मुनव्वरा अपने साथ 40 अफराद को लेकर के, और अपनी कहानी सुनाई है कि हमारे साथ यूँ हुआ, हमारे साथ यूँ हुआ, हम तो आपके मुआहिद थे, और बड़े अजीब अल्फाज में, बहुत ही अजीब अशआर के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए मस्जिद नबी के अंदर। फिर आपने फरमाया कि उसी वक्त फरमाया एक साहब को कि जाओ कुरैश के सामने जाकर 3 बातें मेरी जानिब से पेश कर दो। पहली बात तो यह है कि ये हमारे मुआहिद थे, इन पर किसी ने हमला किया, तुमने मदद की, तो अब पहली शक्ल तो है कि इनका सारी इनका जो नुकसान है वो पूरा करो, इनके मक्तूलिन की दियत दो, इनका माल वापस करो। अगर ये तुम नहीं करते तो फिर जिन्होंने हमला किया है बनू बकर ने, उनसे तुम इलाहदगी का ऐलान कर दो। और अगर तुम ये भी नहीं कहते तो तीसरी शक यह है कि फिर हमारा तुम्हारा मुआहदा ख़त्म है, तुमने हमारे हलीफ पर हमला किया। खैर ये पैगाम जब पहुंचा वहाँ तो कुरैश के नौजवानों में से एक नौजवान उसने कहा कि, और ज़ोर से कहा कि हमें तीसरी बात मंजूर है, हम तीसरी बात मानते हैं। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम गए थे वो सुनकर वापस आ गए, आपको पैगाम सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकरीबन मुआहदे के 17 महीने के बाद ये बात पेश आई है। ज़िक़ादा के अंदर सुलह हुदैबिया है, अगला ज़िक़ादा में आपने उमरतुल क़ज़ा अदा की है, उसके बाद ये हादसा पेश आया है। तो उसके बाद उनको एहसास भी हुआ है कि ये हमने क्या किया, अभी हमारी पोजीशन तो जंग की नहीं है, ये मुआहदा तो हमारे लिए बड़ा खैर का ज़रिया था। चुनांचे बाद में उन्होंने अबू सुफियान को भेजा है, अभी सुफियान अभी मुसलमान नहीं है, बाद में अल्लाह पाक ने इस्लाम से नवाजा। वो मुआहदे के तजदीद के लिए आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, पर तजदीद नहीं हुई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तैयारी शुरू की है जंग की, और अल्लाह की शान चंद महीनों के अंदर भरपूर तैयारी करके 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जानिब बढ़े। किसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि मुकाबले में आता, वो तो उनको इत्तला हो गई थी। तो उनके बड़े बड़े सरदार जो है वो रात को ही मक्का में नहीं रहते थे, बाहर फिरा करते थे। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी के अंदर रमज़ान मुबारक के महीने में मक्का फ़तह कर लिया है। अब जब मक्का फ़तह हो गया तो उसके बाद अल्लाह मियाँ ने ये आयात उतारी कि चूँकि मरकज़ अब फ़तह हो चुका है तो अब मुनासिब यही है कि एक ऐलान ऐसा किया जाए जो कौमी ऐलान हो, और वो ये कि बस अब इस जज़ीरा को अल्लाह ने इस्लाम के लिए जज़ीरतुल अरब को मुंतखब कर दिया, लिहाजा कुछ दिनों के लिए मोहलत है, अपना इंतज़ाम कर लो, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो, यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मरकज़ में गैरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर दूसरों के लिए तो है जजिया, लेकिन ध्यान में रखें जज़ीरतुल अरब हरमैन मक्का उसके इर्द गिर्द यहाँ जजिया नहीं है, क्योंकि अभी जजिया दे कर रहे। अल्लाह की शान है इस गए गुजरे दौर के अंदर भी जब हम दाखिल होते हैं ना जद्दा से जाते हैं तो हरम से कुछ पहले ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर साफ सब लिखा हुआ है गैर मुस्लिमों का दाखिला यहाँ ममनू है, और उसके साथ ही एक दूसरा रोड है उसमें लिखा हुआ गैर मुस्लिम हजरात इधर से सफ़र करें, यहाँ से सीधे नहीं जा सकते। आज भी लिखा हुआ वहाँ पुलिस चेक पोस्ट भी है, जाते भी हैं गैर मुस्लिम की खुल्ले में खुल्ला नहीं जा सकते, खुफिया तौर पर सुना है कि कुछ शरारती ऐसे होते हैं जो जाते आते रहते हैं, वो और बात है, लेकिन वो बोर्ड अभी तक लगा हुआ है। तो ये भी इस्लाम की हक्कानियत की दलील है, अजमत की दलील है कि दुनिया का एक खित्ता ऐसा है जहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी वरना दुनिया में तो कोई और इलाका नहीं है जो कोई कह सके कि यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता, ये इस्लाम की हक्कानियत दलील है। तो खैर, उसके बाद अल्लाह ने यह आयत उतारी कि अब जो है ऐलान कर देना चाहिए कि जज़ीरतुल अरब को इन मुश्रिकों से पाक कर दिया जाए। चुनांचे यह आयत उतरी हैं, इब्तदाई आयत। जब यह आयत उतर गई हैं तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी के अंदर फतेह मक्का के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 300 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अमीर बना करके भेजा कि जाओ इनको हज करा के आओ, और साथ साथ अल्लाह के ये ऐलानात अरफात में सुना दो जा करके। मक्का फतह हो चुका है, अगरचे अरब के बहुत सारे लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, उसमें काफिर भी हैं वगैरह वगैरह। चुनांचे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले हैं 300 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के। इस काफिले के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, ये भी ज़हन में रखो। तो बाद में किसी ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के अंदर बड़े कबाइल का ये तरीक़ा है कि जब किसी मुआहदे की के नक्ज़ के लिए या मुआहदा करने के लिए जब किसी को भेजते हैं किसी नुमाइंदा को, तो जो बादशाह जो होता है, जो बड़ा होता है, उसका कोई करीबी रिश्तेदार होता है जो ये काम करता है ताकि उसकी वसूख हो, उसके अंदर एतमाद ज़्यादा हो। तो अब फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई आप जाओ, और अरफात में आपने ये ऐलान करना है मेरी जानिब से, ये ऐलान है कि बस 4 महीने के मोहलत है, निकल जाओ यहाँ से, ये ऐलान था अभी आ रहे। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। ये बात जो है ना जी, पढ़ते हुए एक अजीब बात मेरे जहन में आई, सुना दूं आपको। वो ये कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला तो दे दिया था, दूसरा अहम काम इस्लामी अरकान में यह हज था, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे नमाज़ पढ़ी। लेकिन हज वाला जो मसला हो रहा था ना, इसमें हज़रत अली नहीं है। अजीब हिकमत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी भेजा है कि आप भी जाओ। इशारा है कि मेरे बाद जो खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो होंगे, उनके पैरोकारों में, उनके मातहतों में हज़रत अली भी होंगे। कोई शुबे में ना रहे कि ये तो गए नहीं थे, इन पर इमारत तो नहीं कायम की अपनी ज़िंदगी में। और दूसरी अजीब बात ये समझ में आई कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे हैं ना वहाँ पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इस काम के लिए, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम कलाम खैरियत के बाद जो पहला सवाल किया वो ये था कि या अली अमीरुन अम मामूरुन। पहला सवाल ये कि अली आप मेरे मातहत हज करोगे या अमीर बन के हज करोगे, ये सवाल है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मामूरुन, कि अमीर तो आप ही होंगे, मैं आपके मातहत होकर हज करूँगा। अलबत्ता वो जो ख़ास ऐलानात दिए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए आपको, वो अब मेरे ज़िम्मे लगा दिया है अरफात के मैदान में, मैं ऐलान करूँगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मातहत बना करके हज भी करा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि बाद में कोई शुबा ना रहे, ताकि बाद में कोई शुबा ना रहे, शुबा करने वाले शुबा ना करें। क्योंकि दीन के अरकान में ये दो काम, चार रुकन हैं ना दीन के बड़े, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ज़हन में रखो, ये जो है ना रोज़ा, रोज़ा असल नहीं है, रोज़ा सिर्फ तैयारी है हज की, हज असल है, रोज़ा उसके ज़िम्न में है। ये तैयारी कराई जाती है रोज़े से कि जाना है ना अल्लाह के घर, तो तैयारी करके जाओ। और ऐसी नमाज और ज़कात के अंदर, नमाज असल है, ज़कात उसकी मातहत है, इसी वजह से नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है। तो दो रह गए अरकान, एक हो गया हज और एक हो गया नमाज। नमाज में भी मुसल्ले पर अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह उनको खड़ा कर दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हों पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और हज जो है ना जी, उसमें भी अमीर बना करके हज करा दिया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनको मातहत बना करके भेज दिया ताकि बाद में कोई शुबा ना करे। ये अजीब हिकमत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये पूछना कि अमीरुन अम मामूरुन, इसमें भी बड़ी हिकमत समझ में आती है कि पहला सवाल जो ये किया कि अली आप आए हो तो अमीर बन के आए हो या मामूर बन के आए हो, तो साफ सब कह दिया कि मैं मामूर हूँ, अमीर तो आप ही होंगे। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इमारत में हज अदा किया, उस हज के दौरान ये आयात जो थी ना उतरी, अल्लाह ने ऐलान किया था। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इब्तदाई आयात अरफात के मैदान में पढ़ी है, अरब के और भी बहुत सारे कबाइल जो अभी काफिर थे, कुछ मुसलमान भी थे, काफिर मुसलमान 300 थे, बाकी तो सारे आए करते थे, वो ऐलान किया। फिर उसमें यह भी ऐलान था कि सुनो, बस आइंदा के लिए अब कोई काफिर हज नहीं कर सकता, कोई नंगा हज नहीं करेगा। पहले नंगे हज किया करते थे ना, उस तरह और भी कुछ ऐलानात जो उसूली थे वो ऐलानात हुए। और उसके बाद जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा था, जिनसे मुआहिदा नहीं था, या जिन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया था, या जिन्होंने अभी निभा रहे थे मुआहिदे को, उनके मुतल्लिक जो ऐलानात थे इन आयात के अंदर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए। दो आयतों का तर्जुमा कर लेते हैं, बाकी थोड़ी सी तफसील है इंशाअल्लाह उसको कलर्स करेंगे। फरमाया देखो, बराअतु मिन अल्लाह, बराअत है, कता ताल्लुक, कता मुआहिदा है, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से। इल्लज़ीना आहदतुम, उन लोगों के साथ, ए मुसलमानों जिनसे तुमने, जिन मुश्रिकीन से तुमने मुआहिदा किया है, احد من المشرکین، ان کے لیے اعلان بیزاری ہے. ایک اور لفظ آتا ہے زیادہ مناسب، وہ ذہن میں نہیں آ رہا. معاہدہ ختم کرنے کے لیے پھر فرمایا فصیحوا فی الارض، اب تم چل پھر لو فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر چار مہینے بس، وعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ان اللہ مخزی الکافرین اور بے شک اللہ رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو، رسوا ہوں گے. کچھ اور تھوڑی سی باتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اس کو عرض کریں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک نے جو باتیں سمجھائی ہیں اپنے اس کلام کے اندر، اللہ ہمیں دل سے اس کو مان کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں